लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहां तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से पास्का महापर्व के दूसरे दिन सोमवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेले, बुनजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Il lunedì dopo Pasqua è detto anche lunedì dell'angelo, perché ricordiamo l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù.
पास्का के बाद वाले सोमवार, जिसको स्वर्गदूत का सोमवार भी कहा जाता है, क्योंकि हम स्वर्गदूत का नारियों के साथ मुलाकात की याद करते हैं जो यीशु की कब्र के पास आई थी। उनसे स्वर्गदूत कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। संत पापा ने कहा,
E questa espressione è risorto va oltre le capacità umane.
यह अभिव्यक्ति कि वे जी उठे हैं मानवीय समझ के परे है। महिलाएं जो कब्र के पास गई थीं और उसे खुला एवं खाली पाया, वे नहीं कह सकें कि वे जी उठे हैं, बल्कि सिर्फ इतना कह सकें कि कब्र खाली था। वे जी उठे हैं एक संदेश है, जिसको सिर्फ एक स्वर्गदूत, स्वर्ग के उद्घोषक के हैसियत से, जिसको ईश्वर ने सामर्थ्य प्रदान किया है, कह सका, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मरियम से कहा था, आप गर्भवती होंगी और वे सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। यही कारण है कि इसे स्वर्गदूत का सोमवार कहा जाता है। सुसमाचार लेखक मती बतलाते हैं कि पास्का के दिन पौ फटते ही एकाएक भारी भूकंप हुआ। वास्तव में प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर लुढ़काकर उस पर बैठ गया। एक विशाल पत्र जो बुराई और मौत की मुहर थी, पैर के नीचे आ गया। वह अब प्रभु के दूत का आसन बन गया। शत्रुओं एवं यीशु के अत्याचारों की सभी योजनाएं एवं बचाव बेकार हो चुके हैं। सभी मुहर गिर गए हैं। दूत का कब्र के पत्थर पर बैठने की छवि बुराई पर ईश्वर की विजय, दुनिया के राजकुमार पर जीत एवं अंधकार पर प्रकाश की जय का ठोस एवं दृश्यमान प्रदर्शन है। यीशु की कब्र भौतिक कारणों से नहीं खुली थी, बल्कि उसमें ईश्वर का हाथ था। मती लिखते हैं कि स्वर्गदूत का मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था, उनके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे। इस तरह विस्तार से जानकारी देना एक चिन्ह है जो ईश्वर के हस्तक्षेप की पुष्टि करता है, जो नए युग इतिहास के अंतिम समय के वाहक हैं, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान से इतिहास का अंतिम समय शुरू होता है, जो हजारों साल का हो सकता है किंतु अंतिम समय है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर के इस हस्तक्षेप के साथ दो प्रतिक्रियाएं हुई।
Quella delle guardie che non riescono a fronteggiare la forza travolgente di Dio e sono sconvolte da un terremoto interiore.
पहरेदार जो ईश्वर के सामर्थ्य के सामने नहीं टिक पा रहे थे, वे एक आंतरिक भूकंप से कांप रहे थे और मृतक जैसे हो गए थे। पुनरुत्थान की शक्ति ने उन लोगों को उखाड़ दिया था जो मौत के विजय की गारंटी दे रहे थे। पर उन पहरेदारों को क्या करना चाहिए था? उन्हें उनके पास जाना था जिन्होंने उन्हें पहरे पर लगाया था और सच्चाई बतलानी थी। उनके पास विकल्प था सच्चाई बतलाना अथवा पहरा का आदेश देने वाले लोगों से राजी होना। वहां राजी कराने का एक ही तरीका था, रुपया। वे बेचारे गरीब लोगों ने सच्चाई को रुपयों में बेच दिया और कहने चले गए, नहीं, शिष्य आए थे और वे शरीर को चुरा ले गए। साहब, रुपये की शक्ति यहाँ भी दिखाई देती है जो ख्रिस्त के पुनरुत्थान से इनकार करता है। उधर महिलाओं की प्रतिक्रिया अलग थी, क्योंकि प्रभु के दूत ने उनसे कहा था, डरिए नहीं, यीशु को कब्र में मत ढूंढिए। संत पापा ने कहा कि स्वर्ग दूत के शब्दों से हम बहुमूल्य शिक्षा ले सकते हैं। हम पुनर्जीवित प्रभु को खोजने से कभी न थकें, जो उन लोगों को प्रचुर मात्रा में जीवन देते हैं जो उनसे मुलाकात करते हैं।
Trovare Cristo significa scoprire la pace nel cuore.
ख्रिस्त को पाने का अर्थ है हृदय की शांति प्राप्त करना। सुसमाचार में महिलाएं शुरू में परेशान होने के बाद स्वामी को जीवित पाकर अत्यंत खुशी महसूस की। संत पापा ने कहा,
In questo tempo pasquale auguro a tutti di fare la medesima esperienza spirituale.
इस पास्का काल में मैं कामना करता हूँ कि सभी लोग वही आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करें। पास्का के सुसमाचार, ख्रिस्त जी उठे हैं, वे फिर कभी नहीं मरेंगे, उनके ऊपर मौत की शक्ति नहीं रह गई है, का स्वागत अपने हृदय, अपने घरों और परिवारों में कर सकें। पास्का की घोषणा, ख्रिस्त जीवित हैं, ख्रिस्त मेरे जीवन में साथ देते हैं, ख्रिस्त मेरी बगल में हैं, वे मेरे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं, यदि उन्हें प्रवेश करने दिया जाए तो वे वहां निवास करते हैं। यही निश्चितता हमें आज और पूरे पास्का काल में स्वर्ग की रानी आनंद कर प्रार्थना को करने के लिए प्रेरित करता है। गब्रेल दूत ने इन्हीं शब्दों प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री के साथ पहली बार मरियम का अभिवादन किया था। अब मरियम का आनंद परिपूर्ण हो चुका है, यीशु जीवित हैं, प्रेम की जीत हुई है। संत पापा ने कामना की कि यही आनंद हम सभी को प्राप्त हो। इतना कहने के बाद संत पापा ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Regina Celi letare, alleluia.
Quiaque meruisti portare, alleluia.
Resurrexis sic udixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare Virgo Maria, alleluia.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
Nel clima pasquale che caratterizza l'odierna giornata, saluto con affetto tutti voi che partecipate a questo momento di preghiera attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
इस पास्का के माहौल में मैं आप सभी का सास्नेह अभिवादन करता हूँ जो इस प्रार्थना के समय में सामाजिक संचार माध्यमों से जुड़े हैं। संत पापा ने खासकर बुजुर्ग एवं बीमार लोगों की याद की जो अपने ही घरों में अथवा नर्सिंग होम में हैं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें प्रोत्साहन देता हूँ और उनके साक्ष्य के लिए कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, मैं उनके करीब हूँ। इसके बाद संत पापा ने सभी विश्वासों को सलाह दी कि वे पास्का के इस अठवारे को विश्वास के साथ व्यतीत करें जिसमें ख्रिस्त के पुनरुत्थान की स्मृति लंबी हुई है। उन्होंने कहा,
Cogliete ogni buona occasione per essere testimoni della gioia e della pace del Signore risorto.
पुनर्जीवित प्रभु के आनंद और शांति को प्रकट करने के हर अवसर का लाभ उठाएं। अंत में संत पापा ने सभी को आनंदमय, शांतिमय और पौत्र पास्का की शुभकामनाएं दी।
Buona, serena e santa Pasqua a tutti.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन महागिरजाघर में पास्का रविवार को सुबह कुछ विश्वासियों की उपस्थिति में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया, परंतु संत पापा के यूखरिस्तीय समारोह में दुनिया भर के क्रिस्तीय विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से शामिल हुए। एक समय में लगभग 9000 लोग एक साथ अकेले वाटिकन न्यूज के फेसबुक पर संत पापा के साथ यीशु के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे थे। 170 से अधिक प्रसारण नेटवर्क और मीडिया आउटलेट ने पास्का समारोह का प्रसारण किया, जिसने हाल के वर्षों में लाइव स्ट्रीमिंग के कारण व्यापक कवरेज देखा है। इस वर्ष वाटिकन संचार विभाग ने नो वन लेफ्ट आउट परियोजना के माध्यम से मूक बधिरों के लिए एक सेवा शुरू की। पवित्र मिस्सा के दौरान संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1-9 को लैटिन और ग्रीक दोनों ही भाषाओं में गाया गया। संत पापा ने प्रवचन के स्थान पर सुसमाचार के पाठ पर मौन प्रार्थना में कुछ समय बिताया। संत पेत्रुस महागिरजाघर में पास्का महोत्सव की बलि वेदी के लिए सजाए गए फूलों की व्यवस्था होलैंड के फूल वालों ने की। वे 35 वर्षों से संत पेत्रुस महागिरजाघर में पास्का महोत्सव के लिए फूलों की सजावट करते आ रहे हैं। मिस्सा के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल माउरो गंबेत्ती को संत पेत्रुस महागिरजाघर के नए प्रधान याजक के रूप में स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं इस महागिरजाघर में आपकी सेवा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, जो सभी ख्रिस्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्डिनल गंबेत्ती को पास्का के दिन पारंपरिक उर्बी एत ओर्बी आशीर्वाद के आगे संत पापा द्वारा दंड मोचन देने की घोषणा करने का कार्य है। संत पापा फ्रांसिस ने भी कार्डिनल अंजेलो कोमास्त्री को प्रधान याजक के रूप में 16 साल के समर्पण और सेवा के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही संत पापा ने उन लोगों की भी सराहना की जिन्होंने पुण्य सप्ताह के दिवस त्रय की धर्म विधि समारोहों को तैयार करने के लिए मेहनत की थी। उन्होंने कहा, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहां संत पेत्रुस में काम करते हैं, गाना गाने वाले, वेदी सेवक, वचन उद्घोषक, उपयाजक, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और 4 अप्रैल को पूरे विश्व के ख्रिस्तियों ने प्रभु येसु के पुनर्जीवित होने का जश्न मनाया। इस दिन विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने विश्व को पास्का का संदेश देते हुए अपनी कठिनाइयों से हताश न होने और भविष्य को विश्वास और आशा भरी नजरों से देखने का आह्वान किया। संत पापा ने इस दिन 2 ट्वीट कर सभी विश्वासियों को पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास करने और अपने जीवन के दुख कष्टों के बीच प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करने हेतु प्रेरित किया। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, हमारे द्वारा सहन किए जा रहे कई कष्टों के बीच हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह के घावों से चंगे हुए हैं। पुनर्जीवित प्रभु के प्रकाश में हमारे कष्ट अब बदल दिए गए हैं। जहाँ मृत्यु थी वहाँ अब जीवन है, जहाँ शोक था वहाँ अब सांत्वना है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, दुनिया में अभी भी बहुत सारे युद्ध और बहुत अधिक हिंसा है। प्रभु जो हमारी शांति हैं, युद्ध की मानसिकता को दूर करने में हमारी मदद करें। और संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल क्रिश्चियन तुमी की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कैमरूनियन महाधर्माध्यक्ष के लोकतंत्र की रक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की प्रशंसा की। कार्डिनल क्रिश्चियन तुमी का गुड फ्राइडे 2 अप्रैल को कैमरून के डौला शहर के एक क्लिनिक में निधन हो गया। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल की मृत्यु के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईस्टर रविवार को एक टेलीग्राम भेजा। संत पापा ने कार्डिनल तुमी के उत्तराधिकारी डौला के महाधर्माध्यक्ष सैमुएल क्लेडा को संबोधित कर लिखा, हमारे भाई कार्डिनल क्रिश्चियन तुमी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर मैं कार्डिनल मंडल के साथ प्रार्थना में एकात्मकता और अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं मृतक के परिवार और दोस्तों के साथ उन सभी लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जो उनके लिए विलाप करते हैं। संत पापा ने कहा, कार्डिनल तुमी ने कैमरून की कलीसिया सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ा है। कार्डिनल तुमी ने 1979 को यागोवा के धर्माध्यक्ष के रूप में, फिर गरोवा के महाधर्माध्यक्ष के रूप में और अंत में 2009 में अपनी सेवानिवृत्ति तक डौला के महाधर्माध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी। वे 1988 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बनाए गए अफ्रीकी देश के पहले कार्डिनल थे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, दिवंगत कार्डिनल ने हमेशा खुद को लोकतंत्र की रक्षा और मानव अधिकारों के प्रचार के लिए साहसपूर्वक प्रतिबद्ध किया। अपने बुढ़ापे में भी शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कार्डिनल तुम्मी की संत पापा फ्रांसिस ने प्रशंसा की। उधर नाइजीरिया के डेल्टा में पर्यावरणीय आपदा, कई निवासियों की मृत्यु, साथ ही जलीय जीवों के विनाश को देखते हुए बोमाडी के धर्माध्यक्ष ने सरकार से तेल रिसाव को रोकने की मांग की। कैथोलिक न्यूज सर्विस के रिपोर्ट अनुसार बोमाडी के धर्माध्यक्ष हाइसिंथ इग्बेबो ने नाइजीरियाई सरकार को जहाजों से तेल फैलने से रोकने के लिए और तेल ड्रिलिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले रसायनों को बंद करने की मांग की है, जो नाइजर के डेल्टा क्षेत्र में वर्षों से कई निवासियों की मृत्यु साथ ही जलीय जीवों के विनाश का कारण बना हुआ है। धर्माध्यक्ष ने कहा, कैंसर लोगों को मार रहा है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए और विभिन्न कंपनियों के इन नावों और जहाजों की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए, जो कच्चे तेल को एक गेज के बंदरगाह तक पहुंचाकर पानी को प्रदूषित करता है। धर्माध्यक्ष हाइसिंथ ने नदी के किनारे रहने वाले विभिन्न समुदायों का दौरा कर यह बात कही। इन यात्राओं के दौरान वे यह पता लगाने में सक्षम हुए कि किस तरह से तेल कंपनियों की गतिविधियों ने क्षेत्र के लोगों का जीवन दयनीय बना दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।